समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
क्षमा शोभति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अर्थात शक्तिशाली और सामर्थ्यवान ही क्षमा करने का अधिकारी है, निर्बल और सामर्थ्यहीन किसी को क्षमा करने का अधिकार नहीं रखता। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बड़ों का बड़प्पन क्षमा करने में होता है। तो आइए इस खूबसूरत दिन की शुरुआत क्षमा, विनम्रता, प्रेम और सौहार्द से करें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज आपके साथ मैं हूँ आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, विद मी टुडे शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता, वील बी प्रेजेंटिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी आर डेल्विंग इनटू द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग। Well, listeners, let me give you a brief description of what's coming so that you stay tuned with us for the next half an hour. First, we'll give you the national and international news. After that, Metro City updates, and we'll be exploring today's history, which is related to today. And today, it's 21st of August. First, we'll begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi will visit Bihar and West Bengal tomorrow. During the visit, the Prime Minister will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 13,000 crore rupees at Gaya in Bihar. Mr. Modi will inaugurate Onta Simariya Bridge project on River Ganga that will enhance connectivity between North and South Bihar. He will also inaugurate the four-lane Bakhtiarpur to Mokama section of NH-31, which will ease congestion, reduce travel time and enhance passenger and freight movement. He will also lay the foundation stone for a series of urban infrastructure projects worth around 1,260 crore rupees. Mr. Modi will flag off the Amrit Bharat Express between Gaya and Delhi and the Buddhist circuit train between Vaishali and Kodarma. During his visit to West Bengal, Mr. Modi will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,200 crore rupees. He will also flag off metro train services on the newly constructed sections in Kolkata. Mr. Modi will also lay the foundation stone of 7.2-kilometer-long six-lane elevated Kona Expressway worth over 1,200 crore rupees. This initiative will enhance connectivity between Howrah, the surrounding rural areas and Kolkata.
From Gayaji, the Prime Minister will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects. He will flag off the Amrit Bharat Express between Gaya and Delhi and the Buddhist circuit train between Vaishali and Kodarma. The Prime Minister will inaugurate the 660 megawatt Buxar thermal power plant, which has been completed at a cost of 6,880 crore rupees. In a major boost to health infrastructure, he will inaugurate the Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center at Muzaffarpur. Under the Namami Gange program, the Prime Minister will inaugurate a sewerage treatment plant and sewerage network at Munger, built at a cost of over 520 crore rupees. He will also lay the foundation stone for a series of urban infrastructure projects worth around 1,260 crore rupees. With Dharmendra Kumar Rai, Payal Sharma for Akashwani News.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा के बाद श्री वैष्णव ने ये घोषणा की।
जो दीपावली और छठ के आगामी दो बड़े त्यौहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली गया, सहरसा अमृतसर, छपरा दिल्ली और मुजफ्फरपुर हैदराबाद के लिए 4 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। दिल्ली में बिहार के एनडीए नेताओं ने दीपावली और छठ पर्व के लिए रेलवे व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को नई प्रायोगिक योजना के तहत कन्फर्म टिकट के साथ साथ वापसी किराए में 20% की छूट भी मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें आर्थिक और बहुध्रुवीय सहयोग पर जोर दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय व्यवस्था के विकास पर विशेष रूप से बातचीत होगी। श्री जयशंकर और लावरोव एशिया प्रशांत में विकसित हो रहे सुरक्षा ढांचे, यूक्रेन में संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति और फलस्तीनी इसराइल के बीच जारी संघर्ष सहित कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, एससीओ और G20 सहित विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक संवाद को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं।
Now moving on, our next story is about the EPFO. The Employees Provident Fund organization has recorded all-time highest net addition of 21.89 lakh members during the month of June this year. The figure represents an increase of 9.14%, marking the highest recorded addition since payroll data tracking began in April 2018. In a statement, Ministry of Labour and Employment informed that around 10,62,000 new subscribers have been enrolled in this month, representing a 12.68% increase over May 2025 and a growth of 3.61% compared to June previous year. The ministry stated that around 6,39,000 new subscribers were added in the 18 to 25 age group. Further, more than 3 lakh new female subscribers joined the EPFO, reflecting an increase of approximately 15% compared to the previous month.
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इस विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया।
Russia has lauded India's stature as a global power and called it a leading economic power with diversified foreign policy. Addressing a press briefing in New Delhi, Russian Charge d'Affaires in India, Roman Babushkin, said that Russia and India have mutual interests and have consistently found ways to cooperate in line. He said that relations between both the countries are expanding and uninterrupted. The Russian embassy official also mentioned the 2 phone calls between 2 nation heads on the situation in Ukraine. He added that engagements, including the current visit of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to Moscow, are setting the stage for the future visit of President Putin to India by the end of this year.
The relations are expanding. They are uninterrupted. So ultimately, the engagements, including the current visit of Honorable Minister Jaishankar and his engagements in Moscow and the coming SCO summit, are setting the stage for the future visit of the President Putin to India by the end of this year.
Now, listeners, we'll provide you sports updates. Indian wrestler Tapasya clinched gold medal at the Under-20 World Wrestling Championships 2025 in Bulgaria. Tapasya defeated Norway's Felista Tomajeva 5-2 in the women's 57 kg category final. We have a report. Listen in.
Indian wrestler Tapasya has bagged gold medal at the Under-20 World Wrestling Championships 2025 in Bulgaria. Tapasya defeated Norway's Felita Stomayeva 5-2 in the women's 57kg category final. So far, Indian wrestlers have bagged 3 medals, including 1 gold and 2 silver, with more action still to come. Meanwhile, the scenic Dal Lake in Jammu and Kashmir is all set to host the first ever Khelo India Water Sports Festival starting today. The 3-day event will witness over 400 athletes from 36 states and union territories vying for 24 gold medals in rowing, kayaking and canoeing. The festival also brings the thrill of demonstration events like water skiing, dragon boat races and the vibrant Shikara boat sprint, aiming to boost both local tourism and interest in water sports. Strong performances are expected from states like Madhya Pradesh, Uttarakhand, Odisha and Kerala, with Madhya Pradesh sending the largest contingent of 44 athletes. The grand opening ceremony is scheduled for 6 p.m. today, with Union Minister of State Raksha Khatse in attendance. On the hockey front, Hockey India has unveiled the 18-member squad for the upcoming Men's Asia Cup, set to take place in Rajgir, Bihar from August 29th to 7th September. India will compete in Pool A alongside Japan, China and Kazakhstan. Veteran drag flicker Harmanpreet Singh will lead the side once again as the team eyes for qualification for the FIH Hockey World Cup 2026, which will be hosted in Belgium and the Netherlands. With Mayur Jain, Ishwara Rai Nigam, Akashwani News, Sports Desk.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें चेन्नई की खबरों के साथ हैं शगुन।
यस आकर्षिता, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई हियर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। द मद्रास हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वॉश द रेजोल्यूशन पास बाय द चेन्नई कॉरपोरेशन टू प्राइवेटाइज द गार्बेज डिस्पोजल वर्क इन जोन्स 5 and 6। Justice K. Surendra said that since the service of the workers is not terminated, the question of retrenchment does not arise and disposed of the plea. On August 13, when the court reserved its order on the plea, the workers submitted that they were willing to call off their agitation and resume work immediately, provided the GCC agreed to abide by the decision of the Industrial Disputes Tribunal in the case concerning the outsourcing of the garbage disposal. I have another update from Chennai, Agarshita. The National Highway Authority of India has approved construction of a 6-lane flyover from Poonawalli to Madura Royal. The elevated corridor will have entry and exit points at its origins and will not have any access ramps in between and will be toll charge. NHAI, the National Highway Authority of India, is also constructing another 4-lane Thiruvar bypass in the Nagapattinam Thanur-Javur section of NH-83.
और अब खबरें दिल्ली से।
जी,
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके ऊपर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये हमला केवल उनके ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमले के बाद वे सदमे में थी, लेकिन अब वे बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कायराना प्रयास उनके हौसले को कभी नहीं तोड़ सकता है। वहीं दिल्ली की शिक्षा विभाग को सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 15 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद से सिर्फ कुछ ही दिनों में विभाग को ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम श्री स्कूलों में दाखिले को लेकर दिख रहे इस उत्साह ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली के पेरेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए तैयार हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज में कल दृष्टिबाधित छात्रों के समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में समावेश नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत कॉलेज परिसर में आईवे हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ब्रेल पुस्तकों और कॉलेज के छात्रों की सुविधा के लिए ब्रेल रेडी फॉर्मेट पुस्तकों को बढ़ावा देगा।
We are heading now, Akarshita, to Bengaluru, and this particular story, it is the update. This is about Tungabhadra Dam. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar informed the Legislative Assembly that the crest gates at the Tungabhadra Dam will be replaced. He elaborated that the Tungabhadra Dam Board has issued the tender for making 33 crest gates, and 6 crest gates are getting ready at Gadag and Hospet, with fabrication work being completed, saying that water cannot be released for the second crop due to crest gate installation. He said, "We need to decide whether dam safety is important or the second crop." He added that the government will take care of the farmers and also ensure the safety of the dam. So this was all about Tungabhadra Dam. The crest gates will be replaced.
और अब मुंबई से खबरें. महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरी ने कल आदि शक्ति अभियान, मिशन वात्सल्य, मातृ वंदना योजना और बाल देखभाल योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की. आदि शक्ति अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य, कुपोषण, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी और दुर्व्यवहार की रोकथाम पर केंद्रित है, जिसके लिए 36 जिलों और 150 तालुकों में समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं. श्रीमती तटकरी ने एकल महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार करते हुए विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल करने का निर्देश दिया है और बाल देखभाल के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है. वहीं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराड़े ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी. 9 अगस्त से अब तक मूसलाधार बारिश ने 19 जिलों में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया है. इसमें 21 लोगों की मौतें और पशुधन की हानि और घर तबाह हो गए हैं. कृषि मंत्री भराड़े ने अधिकारियों को फसल नुकसान का आकलन जल्द पूरा करने और हर किसान तक राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है.
Yes, Akarshita, and this particular update that I have from Hyderabad, it's contrasting to your particular story where recent heavy rains, they have actually provided relief to the city's water supply systems. Well, Hyderabad's drinking water reservoirs, they have reached full capacity because of the recent heavy rains. The early onset of the monsoon has ensured that the reservoirs are filled well before the expected dates, easing early concerns over water scarcity. Compared to the month of August last year, water levels at all 6 drinking water sources, Usman Sagar, Himayat Sagar, Singur, Manjira and 2 other tapping points on Krishna and Godavari rivers, have recorded a notable rise this year. The Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board has issued flood warnings for Usman Sagar and Himayat Sagar reservoirs following heavy inflows from upstream areas. The floodgates of Singur and Manjira were also opened recently to release surplus water after the reservoirs reached their full tank level capacity. So this particular update, it's bit contrasting.
जी, और अब खबर कोलकाता से. कोलकाता की विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मैच में कल डायमंड हार्बर एफसी ने ईस्ट बंगाल एफसी को 2-1 से हरा दिया. और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल. आज दिल्ली में बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है.
Talking about Chennai, it is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with the possibility of light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is again expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 24 degrees Celsius and maximum will be 30 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या खास हुआ. 1959 में आज के दिन ही हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना था और 1965 में आज के दिन ही यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया था.
Now, if we focus on the year 1972, a law was passed for protecting wild animals, including lions and tigers also from extinction. Now, Akashita, the year 1987, Dr. Shankar Dayal Sharma was elected the Vice President of India. In 1990 now, the Prasar Bharati Bill, it was moved in the Lok Sabha. Now, if we focus on 1997, Krishan Kant assumed office as 10th Vice President of India.
और 2008 में आज के दिन ही मून मिशन पर भारत ने नासा से हाथ मिलाया था और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
राइट.
आज प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां की पुण्यतिथि है. उनके पिता भी एक शहनाई वादक थे. उन्होंने 6 साल की उम्र से ही शहनाई बजाना शुरू कर दिया था. वे गंगा घाट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे. बिस्मिल्ला खां ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में मुख्य योगदान दिया. वर्ष 1947 में देश की आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर भारत का तिरंगा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्ला खां की शहनाई ही थी जो आजादी का संदेश बांट रही थी. बिस्मिल्ला खां ने बजरी, चैती और झूला जैसी लोकधुनों में बाजों को अपनी तपस्या और रियाज से खूब संवारा और क्लासिकल मौसिकी में शहनाई को सम्मानजनक स्थान भी दिलाया. आइए सुनते हैं उनका ये शहनाई वादन.
Well, yes, we are listening to Ustad Bismillah Khan's undoubtedly fabulous performance in Shehnai. And, well, his virtuosity made him a leading Hindustani classical music artist, well, indelibly linking his name with the woodwind instrument, which is Shehnai. While the Shehnai had importance as a folk instrument, played primarily by musicians, schooled in traditional ceremonies, Ustad Bismillah Khan elevated its status and brought it to the concert stage.
उन्हें भारत रत्न, रोस्टम पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शगुन, अगर बात करें हम, तो वो इतने बड़े जो है शहनाई वादक थे. और इसके बाद में एक ख्याति बहुत प्रसिद्ध है कि वो बनारस में जो है 80 घाट आपने सुना होगा, वहां पे बैठ करके रियाज करते थे. और 6 साल की उम्र में बहुत छोटे से ही. और एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने आजादी के समय जो है शहनाई बजाई और पूरा जो देश है वो भाव विभोर हो उठा.
Yeah, surely, because it really requires, you know, mastering any musical instrument. It requires years of practice, which he did, he accomplished, and that's why we know him for such beautiful performances. Listeners, today we're also remembering Subramanyam Chandrasekhar. Well, theoretical physicist who made significant contributions to the scientific knowledge about the structure of stars, stellar evolution, and also black holes. He also devoted some of his prime years to fluid dynamics, especially stability and turbulence, and made important contributions. Well, he was awarded the 1983 Nobel Prize in Physics along with William A. Fowler for the theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of stars. Well, listeners, his mathematical treatment of stellar evolution yielded many of the current theoretical models of the later evolutionary stages of massive stars and also black holes.
आज विष्णु दिगंबर पलुस्कर की पुण्यतिथि है. वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, संगीत गुरु और गायन कौशल के धनी व्यक्ति थे. विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया. पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान भी दिया. उन्होंने 3 खंडों में संगीत बाल बोध नामक पुस्तक लिखी और 18 खंडों में रागों की स्वरलिपियों को संग्रहित किया. इसके अतिरिक्त पंडित पलुस्कर ने स्वल्पालाप गायन, संगीत तत्व दर्शक, राग प्रवेश तथा भजनामृत लहरी इत्यादि नामक पुस्तकों की रचना भी की. आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय गायन.
बाजत पैदन या धूम के चलत राम चंद्र हमग चलत राम चंद्र.
Well, yes, we are talking about Pandit Vishnu Digambar Pulaskar, the Hindustani musician. Well, he was one of the greatest contributors to the field of Hindustani classical music, as even Akarshita was telling us, and is regarded as the reviver of Hindustani music during the days of freedom struggles as well. Well, listeners, we will also talk about another musician now. Today, we are also remembering Kenneth Ray Rogers, the singer and songwriter. He was inducted into the Country Music Hall of Fame because he has been playing in this particular genre, the country music. Well, he was particularly popular with country audiences, but also charted more than 120, a whopping 120 hit singles across various genres, topping the country and pop album charts for more than 200 individual weeks. That is a lot. Well, his fame and career spanned multiple genres: jazz, folk, pop, rock and country. And I have selected such a beautiful song. This is Evening Star, even though it's morning. Listen in.
If you wanna see the wonders of the age, you must follow the evening star.
आज भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर की पुण्यतिथि है. वे देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे. वर्ष 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया. गुजराती भाषा पर भी इनका अच्छा ज्ञान था. 1922 में ये गुजराती पत्र नवजीवन के संपादक भी रहे. गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए, काका कालेलकर ने सब में भाग लिया और कुल मिलाकर 5 वर्ष कैद में बिताए. उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. और आज ही भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वामन राव बलिराम लाखे की पुण्यतिथि है. 1913 में लाखे जी ने अपना कार्य क्षेत्र सहकारी आंदोलन को बनाया, जिससे वे जीवन पर्यंत जुड़े रहे. सहकारिता आंदोलन के जरिए दुखी और शोषित किसानों की सेवा तथा सहयोग करना उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया. सन 1915 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी. वामन राव बलिराम लाखे जी उसके संस्थापक थे. छत्तीसगढ़ में शुरू में जो राजनीतिक चेतना फैली, उसमें लाखे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा. उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन और सहकारी संगठन में बिताया.
Listeners, today we are also remembering William Kelly, the inventor. He is credited with being one of the inventors of modern steel production, and we all know how it has impacted the world right now. And you'll be intrigued to know, listeners, that through this process, the process of injecting air into molten iron, this is how he actually invented the modern steel production. Let me talk about now another musician. Today, we are also remembering Joe Graham Miller. Well, he has been known by his name Joe Strummer amongst his fans alike. He was a co-founder, lyricist and rhythm guitarist and lead vocalist of the punk rock band. This was the band known as Clash. I have selected a beautiful piece by him. This is called Redemption, so listen in.
After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the...
अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखो, वहां बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं. ये पंक्तियां हैं इस्मत चुगताई की. आज उनकी जयंती है. उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चुटीले और संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम भी उठाया. उनकी प्रमुख रचनाएं रही लिहाफ, टेढ़ी खीर, एक बात, कलियां, जंगली कबूतर आदि, और उन्हें उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया.
Let me talk about now the another musician that I have chosen to tell you all about. Listeners, I am also have been talking about musicians. Today we are also remembering Count Basie. He has been the pianist, organist and band leader. So listen in to one of his creations, listeners, quickly.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।